कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला।
ओम शांति। कभी सोचा नहीं था कौन मिलेगा और स्वर्ग से भी सुंदर है संसार, मधुबन का ये आंगन, प्रकृति की शीतल छाया, तपती गर्मी के बीच में प्यारे बाबा ने हम सबको अपनी शीतल छाव में रखकर तपस्या करा रहे हैं। और ऐसी शीतला देवियों के वाइब्रेशंस के बीच में दीदी को देख करके क्या लगता, कौन सी देवी याद आती है बताओ भाई, माता है बताओ, कौन सी देवी याद आती है? अच्छा, शीतला देवी याद आती है। तभी तो ये तपस्या भूमि शीतलता के वाइब्रेशंस को फैलाता रहता है। तो आज हम सब के बीच में आदरणीय श्रद्धेय हमारी डॉक्टर सविता दीदी जी है, एक हाथ से ताली से दीदी जी का हम सभी स्वागत करेंगे। डॉक्टर और आध्यात्मिकता दोनों क्या लगते हैं? लगते हैं दोनों विपरीत दिशाएं हैं दुनिया में पूछा जाए, ये अलग अलग दिशाएं दिखाई देते हैं। लेकिन सौभाग्य की बात है आप इस भट्टी में तीन तीन डॉक्टरों को सुनेंगे और लगेगा कि ये डॉक्टर है या स्पिरिचुअल पर्सन है, आप सोचना मुश्किल हो जाएगा। इतने बाबा ने इनको ज्ञान की गहराई दे रखी है, शीतलता का अनुभव कराया है और पूरे 50 वर्ष हाफ सेंचुरी जीवन का एक अमूल्य पीरियड कहाँ चला गया? चला गया नहीं कहेंगे, कमाने में और सफल होने में अपना जीवन लगाया। पूरे 50 वर्षों से दीदी ने इस ज्ञान का अध्ययन किया है, चिंतन किया, मनन किया है और अपने इस डॉक्टर पेशी के साथ साथ उस पढ़ाई के साथ इस ज्ञान की महीनता को समझ करके पिछले 37-38 वर्षों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित होकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मुख्यालय माउंट आबू में ही आप विशेष अपनी सेवाएं देते हैं। शांतिवन में जो मानस सरोवर देखा है आप सबने, मानस सरोवर का प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बन करके वहाँ जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं आप उनका संचालन करते हैं और साथ ही साथ हमारी महिला विंग, महिला सशक्तिकरण को लेकर के महिला विंग के द्वारा जो कार्यक्रमों का आयोजन होता है तो आप नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे देवियां हमारे बीच में है और देवियां क्या करते हैं, क्या करते हैं भाई? और ऐसे प्रकट नहीं होती देवियां बिना तपस्या से। आप सबने तपस्या की है, उस तपस्या का फल प्रकट होकर उनके मुखारविंद से जो भी वरदान हमें मिलेगा हम अवश्य प्राप्त करेंगे। आज का बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, स्वमानधारी ही सम्मानधारी होगा। लगता है हमारी डॉक्टर सविता बहन जी से मिल करके खुद सदा इस स्वमान में रहती है तो ऐसे स्वमान में स्थित होने के एक ऐसे फीलिंग, ऐसे वाइब्रेशंस इनके द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। तो आज जैसे बाबा ने संडे की मुरली में कहा था उसी बात को और स्पष्टीकरण देंगे डॉक्टर सविता बहन जी। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चों को बाबा ने इतना भाग्यशाली बनाया है, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता भगवान ही हमारा हो गया, तो हम कौन बन गए? पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं। तो ये स्वमान है, यानी भगवान ने जो मान दिया स्वयं ही स्वयं को, फिर हम वो मान दें। स्वमान माना स्वयं को ही वो मान देना जो बाबा ने जिस नज़र से हमको देखा, या बाबा जो हमारा वर्तमान भविष्य और भूतकाल जानते हैं उसकी जो स्मृति दिलाई बाबा ने हमें, ऐसा ही अपने को समझना और चलना। एक है सुनना, सुनकर हम खुश होते हैं, बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, बाबा हमारे लिए इतनी ऊंची बात कहते हैं, और फिर सुनते हैं और भूल जाते हैं। तो स्मृति स्वरूप बनेंगे तब समर्थी आएगी, स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप। जो भी बाबा ने हमें टाइटल दिए हैं, सम्मान दिए हैं, वो कब हमें अनुभव होंगे? जब हम उसे बार 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 स्मृति में लाएंगे। जिसको कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो दुनिया में भी जो नशे होते हैं वो तब चढ़ते हैं जब उनको अच्छे से घोटा जाता है। अगर घोटा हुआ भांग को अच्छे से नहीं घोटेंगे तो उसका नशा इतना नहीं चढ़ेगा। घोटना ये होता है, फिर शराब है या जो भी नशे होते हैं वो उसको फर्मेंट करते हैं, है ना। जैसे वाइन है तो अंगूर को फर्मेंट करते हैं, बियर है तो जौ को फर्मेंट करते हैं, और उसके बाद वो नशीला पदार्थ बनता है जो शराब के रूप में बिकता है, है ना। तो ऐसे ही जो स्मृतियां बाबा ने हमें दिलाई, जब तक हमने उसको घोटा नहीं तब तक वो नशा हमें अनुभव नहीं होगा। वो खुशी, वो जो स्थिति हमारी बननी चाहिए वो नहीं बनेगी ना। इसके ऊपर एक बोध कथा आती है, बाबा क्यों हमें बार 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 कहते हैं। तो एक बार एक शेर का बच्चा, तो ऐसे बोध कथा है कि एक बार एक शेरनी का बच्चा वो बिछड़ जाता है अपने ग्रुप से, तो जंगल में भटकने लगता है। तो भटकते भटकते वो भेड़ों के झुंड में मिल जाता है। अब छोटे बच्चे एक जैसे लगते हैं, तो जो भेड़ होती है, माना जिसके भी बच्चे होते हैं उस ग्रुप में, उसको ये समझ नहीं आता कि ये मेरा बच्चा है या भेड़ शेर का बच्चा है, तो वो उसको अपने साथ ही ले लेती है और अपना दूध पिलाती है और वो उन्हीं के बीच में पलने लगता है। तो शेर जो है वो भेड़ों के साथ पलता है तो वैसा ही सीखने लगता है, जैसे भेड़ आवाज निकालती है, भेड़ घास खाती है तो भी घास खाना शुरू कर देता है बाद में, और झुंड में चलना ना, भेड़ अलग नहीं चलती, झुंड में चलती है। तो और उसकी जो माँ थी वो भी सिखाती थी कि कभी भी जंगल में नहीं जाना, वहां शेर रहता है वो खा जाता है भेड़ों को, और दूसरा कभी भी अलग नहीं होना, साथ में रहेंगे तो सेफ है, तो भेड़ कभी भी अलग नहीं चलती है। तो छोटा था तो ठीक था, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा होने लगा तो उसकी शेप अलग दिखाई देने लगी, क्योंकि भेड़ तो था नहीं, वो था तो शेर। तो दूसरी भेड़े उसका मजाक बनाती थी कि ये कैसी भेड़ आ गई हमारे बीच में। तो उसको बड़ा, क्योंकि खुद को खुद तो नहीं देख सकता था ना, तो उससे बड़ा ही वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था कि ऐसा क्या है जो मेरा मजाक उड़ाते हैं सब। और कई बातें उसे पसंद भी नहीं आती थी, जैसे उसको घास खाना अच्छा नहीं लगता था, उसको ये झुंड में पीछे पीछे चलना अच्छा, क्योंकि शेर था ना, संस्कार तो शेर के थे, तो शेर तो राजा होता है तो अपने हिसाब से, मेरा मतलब मैं चलूं। पर फिर माँ की बात याद आ जाती थी कि अलग नहीं होना है, शेर खा जाता है। फिर कई बार उसको ऐसे दिल में आता था कि ये सब मेरा मजाक बनाते हैं, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। तो जंगल में जाऊंगा तो शेर खा जाएगा, ये भी याद आ जाता था, तो फिर वहीं रहता था उनके साथ। लेकिन जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो बिल्कुल शेर जो है वो क्लियर उसका आ गया ना, मतलब। तो फिर जब ज्यादा ही सहन नहीं हो रहा था उसे ये सारी बातें, तो उसने सोचा भले शेर खा जाए लेकिन अब तो मुझे जाना ही है, यहाँ नहीं रहना है, इन भेड़ों के साथ नहीं रहना है। तो ऐसे ही किया उसने कि एक दिन मन बना के और चला गया जंगल में। तो जब जंगल में गया अंदर 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 तो सचमुच शेर आ गया, क्योंकि शेर तो रहता है ना जंगल में। तो उसने देखा एक बड़ा सा जानवर आ रहा है सामने, तो वो समझ गया अभी ये शेर आ गया, अब तो मुझे खा जाएगा। तो डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली। अब शेर शेर को नहीं खाते हैं, उनकी फैमिली होती है ना। तो शेर ने उसको देखा कि मेरे को देख के आंखें बंद कर रहा है, तो आंखें क्यों बंद कर रहा है, और कांप रहा है एकदम, क्यों डर के मारे कांप रहा था। तो उसके पास आकर के उसको पूछता है क्यों डर रहे हो तुम, क्यों कांप रहे हो। उसने कहा कि तुम खा जाओगे मेरे को। उसने कहा मैं क्यों तुमको खा जाऊंगा। तो बोला नहीं, मेरी माँ कहती है शेर भेड़ को खा जाता है। तो उसने कहा कि वो हंसने लगा, उसने कहा कि तुम भेड़ हो क्या। बोला हाँ मैं भेड़ हूँ। तो वो और हंसने लगा, उसने कहा किसने कहा तुम भेड़ हो। मेरी माँ कहती तुम भेड़ हो, तो भेड़ों को शेर खा जाता है। तो उसने उसको कहा तुम शेर हो ना, तुम भेड़ नहीं हो शेर हो। तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था, उसने कहा मैं कैसे शेर हो सकता, क्योंकि जिंदगी में अब तक जितना भी वो बड़ा हुआ उसने आज तक वही सुना अपने लिए। फिर वो उसने बोला अच्छा, उसने दहाड़ा, जो शेर आया था उसने दहाड़ा, उसने कहा आवाज निकालो तुम मेरे जैसी आवाज। वो उसको बताना चाहता था कि तुम शेर हो, पर उसने कौन सी आवाज निकाली, मिमियाने लगा वो। तो वो और हंसा, उसने कहा कैसी आवाज निकाल रहा है। उसने कहा मेरी माँ मेरे सब जो है भाई बहन सब ऐसी आवाज निकालते हैं। तो उसने कहा कि नहीं मेरे जैसी आवाज निकालो। फिर उसने दहाड़ के बताया, तो उससे निकले ही नहीं क्योंकि उसको उसने सीखा ही नहीं वो। फिर वो मांस लेकर आया ना, शिकार करते हैं शेर, तो भाई ये भी खाएगा, अभी नया आया है इधर। तो उसने नहीं खाया, तो उसने कहा कि मैं तो घास खाता हूँ। फिर वो हंसा कि वह घास खाता है। तो फिर उसने सोचा इसको कैसे समझाया जाए, इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये शेर है भेड़ नहीं है। तो वो उसको लेके गया तालाब पे, तालाब पे शक्ल दिखती है ना पानी में, तो वहां उसने उसको दिखाया कि देखो मैं कैसा दिख रहा हूँ और तुम अपने को देखो तुम कैसे दिख रहे हो। तो उसको लगा शक्ल तो दोनों की एक जैसी है, जैसे इसकी है वैसी मेरी है। उसने कहा अभी तुमको दिख रहा है कि तुम मेरे जैसे हो, तुम शेर हो। तो उसने कहा नहीं, अभी भी उसको विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा नहीं मैं तो भेड़ हूं। तो उसने थोड़ा उसको मतलब गुर्रा के जैसे गुस्से में बोलते हैं ना कि समझ नहीं आता है जब साफ साफ दिख रहा है, तो डर के मारे उसने कहा हाँ हाँ मैं शेर हूँ, मैंने मान लिया उस समय के लिए कि मैं शेर हूँ। तो उसने कहा कि देखो मैं तुमको रोज सिखाऊंगा, तुमको रोज मेरे साथ एक घंटा रहना है, शेर कैसे चलता है, शेर कैसे आवाज निकालता है, और शेर मांस खाता है, और जो भी शेर के जो भी लक्षण होते हैं है ना, शिकार करना वगैरह, वो सब मेरे से सीखो, तुम मेरे साथ रहो। तो वो रोज उसको टाइम दे करके सिखाता रहा, तो भी उसको काफी, अब जो आवाज उसकी बन गई, उसको वो आवाज बदलने में तो इतना आसान नहीं था ना, तो उसको काफी समय लगा अपने ओरिजिनल रूप में आने में, जो वो असल में शेर था। अब कहानी का भाव क्या है कि ऐसा नहीं है कि वो शेर नहीं था, लेकिन क्या हुआ, वो भटक गया, यानी वो भटक गया और कहाँ चला गया, भेड़ों में चला गया। तो उसने सारा कुछ वही सीख लिया जो भेड़ें थी, लेकिन जब वो वापस अपने शेर के कुल में आया तो फिर उसको भेड़ से शेर बनना भी इतना आसान नहीं था, उसमें भी उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी तब वो अपने ओरिजिनल रूप में आया। यहाँ भी हमारे साथ भी यही हुआ, ड्रामा में क्या हुआ, द्वापर युग में हम पहुंच गए माया रावण के राज्य में। तो उसके संग दोष में आ गए क्योंकि माया ने अपना बना लिया हमको, फिर अपने ही जैसा अपना बना के अपने ही जैसे रंग रूप में रंग दिया। और फिर बाबा जब दोबारा आए हमारे लिए पतित से पावन बनाने के लिए, और बाबा ने हमें हमारे ओरिजिनल स्वरूप की स्मृति दिलाई, जैसे वो शेर उसको स्मृति दिला रहा था, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं कि मैं ये हूं। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है कि आधा तो हमको संशय आता रहता है, मैं हूं भी कि नहीं। बाबा तो बड़ी बड़ी बातें कहता है, बाबा कहता है शिव शक्ति, कहां शिव शक्ति, मास्टर सर्वशक्तिवान, कहां मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। माना वो मानने में भी थोड़ा हमें मुश्किल होती है ना, बाबा तो हमें इतने ऊंचे ऊंचे टाइटल देता है, क्या सचमुच ऐसे हम हैं या ऐसे हम बन सकते हैं या ऐसे हो सकता है। तो वो वाला फेज कि स्वीकार करने में भी हमें थोड़ा मुश्किल होती है, पहले तो आत्मा मानने में ही थोड़ी मुश्किल होती है, फिर मैं कौन सी आत्मा हूं वो मानने में भी थोड़ी मुश्किल होती है। पर बाबा हमारे पीछे लगे रहते हैं, जैसे वो शेर उसके पीछे लगा रहा है ना, तब जाकर के वो उसको सिखा पाया। तो ऐसे ही बाबा भी रोज हमें स्मृति दिलाते रहते हैं, नहीं बच्चे आप ये हो, अब हम एक्चुअली हम हैं, लेकिन ओरिजिनल रूप में आने में हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तब फिर हम स्मृति स्वरूप बनते हैं, तब हमारे अंदर वो सामर्थ्य आती जो हमारा आदि अनादि स्वरूप है। फिर जैसे हम देखते हैं शास्त्रों में बताते हैं हनुमान जी ना, हनुमान जी को पवन पुत्र कहते हैं, वो उड़ सकते थे लेकिन भूल गए वो। तो जब सीता को ढूंढने का टाइम था और रावण की लंका में जाना था, समुद्र पार करके जाना था, तो और कोई नहीं कर सकता था, तो हनुमान जी भी वैसे ही खड़े थे कि मैं भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि मैं उड़ सकता हूँ। फिर जामवंत थे उनके साथ ना, जो बुजुर्ग थोड़ा बंदर थे और उनको पता था कि हनुमान की शक्तियां क्या है, तो उन्होंने उनको बताया कि अरे तुम उड़ सकते हो, तुम तो पवन पुत्र हो ना, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं। इतना योजन समुद्र वो पार करके लंका में जाना, मैं कैसे जाऊंगा। लेकिन जब उन्होंने पूरी उसको कहानी सुनाई, माना जो भी उनकी हिस्ट्री थी बचपन से लेकर के, और वो सुनाई, और फिर उनको याद आया अच्छा हाँ मेरे अंदर तो ये पावर है, और फिर उन्होंने वो उड़ान भरी, तो उड़ भी गए और वो पहुंच भी गए, है ना। तो स्मृति नहीं थी, विस्मृति में आ गए तो वो शक्ति भी उनके पास नहीं थी। दुनिया में भी इस चीज को बहुत महत्व देते हैं कि हमारा सेल्फ एस्टीम कैसा है। सेल्फ एस्टीम वाला वो स्वाभिमान कहते हैं, बाबा हमें क्या कहता है स्वमान, क्योंकि बाबा हमें अभिमान नहीं चाहता, वो अभिमान के साथ जुड़ा हुआ है स्वाभिमान, है ना। तो दुनिया में लोग अपने आप को मैं कुछ हूं वो वाला भाव रखते हैं, लेकिन हमारा तो स्वमान जितना ऊंचा है उतना ही हम निर्माण है, है ना। तो स्वाभिमान या सेल्फ एस्टीम की बात जहां आती है, तो जहां लोगों का सेल्फ एस्टीम अच्छा होता है वहां उनके अंदर जो क्वालिटीज होती हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर, और उनके अंदर जिम्मेवारी से काम करने का संस्कार होता है, और इसीलिए वो और लोगों से ज्यादा सफल होते हैं। माना क्या फायदा होता है हमको, तो जैसे उसमें भी एक बार ये थॉमस एडिसन है ना, उनका नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, जिसके कारण ही हम रोशनी में बैठे हैं आज ही, जो आविष्कार हुआ दुनिया में। तो वो जब छोटे थे बहुत, स्कूल में नेचुरली माँ ने स्कूल में डाला उनको, विदेशों में क्या होता है सिंगल पेरेंट ज्यादा होते हैं, तो उनकी भी माँ थी, पिता से उनका तलाक हो गया था, माँ के साथ रहते थे वो, और माँ ने उनको स्कूल भेजा पढ़ने के लिए। तो कुछ महीने तो वो जाते रहे, लेकिन फिर थोड़े समय के बाद माँ को बुलाया वहाँ स्कूल टीचर ने, और माँ को एक पत्र पकड़ा दिया, और माँ ने जब उस पत्र को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आपका बेटा जो है वो कौन सी बुद्धि है, मंद बुद्धि है, हाँ आपका बच्चा जो है वो मंद बुद्धि है, और ये रेगुलर बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकता है, और इसीलिए आप इसे घर ले जाइए, अब इसको स्कूल मत भेजना, तो ठीक है, माँ ले आई उसको घर, और फिर उसके बाद वो स्कूल जाना बंद हो गया, भेजा नहीं माँ ने। तो उसने पूछा बच्चे ने कि माँ मुझे स्कूल, मैं नहीं जा रहा हूँ, आप मुझे स्कूल नहीं लेकर के जाती हो। तो उसने कहा कि बेटा तुम है ना बहुत जीनियस हो, तो तुम वो उन बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते, मैं तुम्हें घर पे पढ़ाऊंगी। तो जब माँ ने उसको बोला कि तुम जीनियस हो, तो उसने उसको मान लिया। माँ ने बोला है तो जीनियस है, माना जीनियस है, तो उसने उस बात को अंदर ले लिया, और सचमुच वो बच्चा जो मंद बुद्धि था वो जीनियस ही हो गया, इतना बड़ा साइंटिस्ट बन गया, और इतने आविष्कार किए उसने। और जब उसकी माँ ने शरीर छोड़ा तो वो सारा माँ का सामान हटा रहा था, तो ये पत्र जो माँ को टीचर ने दिया था वो उसके हाथ में आ गया, माँ ने उसको फड़ा नहीं था, रख दिया। तो वो पढ़ा उसने, और अब उसको पता चला कि वो जीनियस नहीं था, वो कौन था, मन बुद्धि था, लेकिन एक माँ ने उसको वो सम्मान दे दिया, और वो सम्मान से वो सचमुच क्या बन गया, जीनियस बन गया। तो बाबा भी हमें जो टाइटल देते हैं, कई बार हमें लगता है हम इस योग्य हैं नहीं, लेकिन अगर वो स्वीकार हो गया ना, हमने उसे स्वीकार कर लिया, तो सचमुच हम वो बन जाएंगे जो बाबा हमें बनाना चाहते हैं, वो अनुभव हम करेंगे अपने जीवन में। तो स्वमान का जो टाइटल, कितने टाइटल बाबा ने दिए, अब आप लोग तो खुद ही सुना सकते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि बाबा ने हमें क्या टाइटल दिए। बाबा कहते हैं ऐसे टाइटल दुनिया में किसी के भी नहीं हो सकते, कोई कितना भी VVIP हो, माना कोई राजनेता हो, कोई अभिनेता हो, कोई धर्मात्मा हो, कोई महान आत्मा हो, किसी को भी ऐसे और इतने टाइटल नहीं हो सकते। भगवान की हु इज हु की लिस्ट में वो VIP नहीं है। कौन है, कौन है, हम बच्चे हैं, है ना। तो फिर क्या टाइटल हैं ऐसे जो दुनिया की आत्माओं को नहीं हो सकते। मास्टर सर्वशक्तिमान, जो मैंने सुना दिया उसको रिपीट मत करो, जो दूसरे और हैं वो सुनाओ, एक एक जना बोलो, एक एक जना। सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, सचमुच और कोई हो ही नहीं सकता सुदर्शन चक्रधारी। और नैनो के नूर हैं, अच्छा अंगद हैं, महावीर हैं, पवित्रता की देवी हैं, और बाबा के मस्तक मणि हैं। भाई कुछ नहीं है क्या? हाँ जी, दिल तख्त नशीन है, राज ऋषि हैं, विघ्न विनाशक हैं। देखो सब अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हैं, संतुष्ट मणि हैं, अच्छा हाँ, विश्व कल्याणकारी हैं, नैनो के नूर हैं, ठीक है, विजयी रतन हैं जी, बाबा के सरताज हैं, बिल्कुल। बाबा ने कहा चरणों के धूल, चरणों के दास दासी से क्या बना दिया बाबा ने, और माताओं को खास, हाँ माताओं को कौन सी पदवी दे दी, हाँ क्या बना दिया, जो कहा कि सिर का ताज बना दिया और शिव शक्ति बना दिया। तो ये सब जो बाबा ने हमें टाइटल दिए, बाबा कहता है अपने सोमान की सीट पर सेट रहो। अगर हम सोमान की सीट पर सेट हैं, तो जो सीट की पोजीशन होती है ना व्यक्ति को, वो अनुभव स्वतः ही होता है। मानो दुनिया में भी किसी को सीट मिल जाती है, जब तक उसको सीट नहीं है तब तक वो नशा, वो खुशी, वो नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो सीट मिलेगी, अपने आप वो सीट ही उसके अंदर वो जिम्मेवारी ले आती है, वो गुण ले आती है ना, वो विशेषताएं उसके अंदर अपने आप आने लग जाती हैं। आज तक द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट नहीं थी भारत की, एक मतलब साधारण महिला तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी जैसे उन्होंने MLA की पोस्ट मिली उनको, फिर मिनिस्टर की मिली, फिर गवर्नर की मिली, और फिर प्रेसिडेंट की मिली, तो फर्क रहा ना, सोमान में फर्क हुआ ना, जैसी जैसी पोजीशन में आए वैसे वैसे अपने आप वो स्टेटस का जो नशा है वो खुशी है, वो फर्क पड़ गया। और जब सीट से उतर जाएंगे तो सीट पर हैं तब तक मान है, सब झुकते हैं, है ना, सब मानते हैं, और सीट पर नहीं है तो, सीट पर नहीं है तो फिर पता भी नहीं कि आप कभी राष्ट्रपति भी थे। माना अभी अभी तक भी तो पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति सब है ना, तो कितना अंतर आ जाता है जब व्यक्ति सीट पर है और सीट पर नहीं है। तो बाबा कहते हैं जैसे उस सीट की बात होती है, उस पोजीशन की बात होती है, ऐसे ही आपकी जो पोजीशन है उससे माया आपको उतारने की कोशिश करती है। माया आपकी ओपोजिशन पार्टी की लीडर है, वो पूरी कोशिश करती है कि आप सोमान को भूल जाओ और नीचे आ जाओ, फिर माया के वश हो सकते हैं, क्योंकि जब तक सीट पर हैं उस सीट की पोजीशन के गुण और शक्तियां हमारे अंदर रहेंगे। इसीलिए बाबा कहता है कि हमेशा अपनी सुमान की सीट पर सेट रहो। तो हर दिन हमें अपने सुमान को याद करना है। अमृत वेले जब हम योग लगाते हैं तो जो बाबा ने हमें सुमान की पूरी माला है, सारे सुमान तो हम एक दिन में स्मृति में ला भी नहीं सकते, इतने सुमान है, लेकिन फिर भी योग के बाद हम कोशिश करें कि जितने भी 8-10 सोमान, उसमें भी कहते हैं अगर 5 स्वरूप का हम अभ्यास करें ना, तो वो उस 5 स्वरूप में हमारे मुख्य मुख्य सभी सोमान आ जाते हैं। तो एक अमृत वेले जरूर करना है। तो 5 स्वरूप कौन से हैं? मेरा अनादि स्वरूप, अनादि स्वरूप में जो बाबा की महिमा है वो ही मुझे आत्मा की महिमा है, तो वो सोमान मुझे मिल जाता है कि जैसे शिव बाबा भाग्य विधाता है ऐसे मैं भी मास्टर भाग्य विधाता हूँ, जैसे बाबा विधाता वरदाता है ऐसे मैं आत्मा भी उसी स्वरूप वाली हूँ। फिर मेरा आदि स्वरूप है दैवी स्वरूप, हाँ हम ही देवता थे, हम ही पूज्य थे, तो फिर वो सारा सोमान कि हम कितनी श्रेष्ठ महान आत्माएं थे, पूज्य आत्माएं थे, उसको लाओ अपने देवताई स्वरूप के सारे गुण, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, तो कैसी स्थिति बनेगी? अपने आप हम उस देवताई स्वरूप के स्वरूप में चले जाएंगे। फिर हम द्वापर युग में आए तो बाबा कहता है कि हमारी ही, हम ही पूजनीय बन गए। फिर मंदिरों में किसकी पूजा हो रही है? तो फिर हम देवी देवता के रूप में दाता हो गए ना। देवी देवताएं क्यों देवी देवताएं हैं? क्योंकि दाता स्वरूप है ना। जो भी भक्त आते हैं वो किस लिए आते हैं मंदिरों में? क्या देने आते, लेने आते हैं? तो वो स्वरूप को स्मृति में लाओ तो ये सारा हो जाएगा ना, कि हम ही कल्याणकारी हैं, हम ही बाप के समान रहम दिल हैं, है ना, दया के सागर, क्षमा के सागर, करुणा निधान, जो भक्त गाते हैं महिमा वो हमारा ही स्वरूप है और हमने किया है तभी वो गायन है। और अभी ब्राह्मण जीवन में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण ब्रह्मा मुख वंशावली, इस कल्प वृक्ष के हम जड़ हैं, तना हैं, आधार मूरत हैं, उधार मूरत हैं, तो ये 5 स्वरूप के अभ्यास में कि पहले अभी मैं ब्राह्मण हूँ और फिर ब्राह्मण सो फरिश्ता, तो फिर फरिश्ता स्वरूप में हम कैसे मनसा सेवा कर रहे हैं वर्तमान समय में, फरिश्ता रूप में हम विश्व की आत्माओं की सेवा कर सकते हैं, तो ये सारे स्वमान उसमें समाये हुए हैं। तो ये तो करना आसान है, ऐसे यूं यूं एक एक टाइटल याद करना शायद कभी मुश्किल लगे, लेकिन ये आसान है। तो बाबा कहता है अगर स्वमान में रहेंगे तो देह अभिमान समाप्त हो जाएगा। या तो देह अभिमान है या स्वमान है, दोनों में से एक ही रह सकता है। और देह अभिमान समाप्त किया है संगम युग पर, उसकी प्रारब्ध क्या मिली? स्वमान और सम्मान के अधिकारी वर्तमान में भी हैं और पूरे कल्प में हम सम्मान के अधिकारी बनते हैं। पूरे कल्प में सम्मान मिलता है क्योंकि स्वयं भगवान अभी हमें सम्मान देते हैं। बाबा कहता है बाबा बच्चों को अपने से भी ऊंचा देखते हैं। अभी संडे की मुरली में बाबा ने कहा ना, बाबा क्या समझते हैं मेरे से भी डबल पूज्य बच्चे हैं, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, लेकिन बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। तो बाबा अपने से भी आगे, मतलब बच्चों का मैं सेवाधारी बनकर आता हूँ और बच्चों को मैं मालिकम सलाम करता हूँ। मतलब खुद ही बाबा रोज हमें मुरली में याद प्यार नमस्ते कहते हैं, तब हम नमस्ते कहते हैं। पहले बाबा हमें नमस्ते कहते हैं, फिर हम नमस्ते कहते हैं। तो दुनिया में भी जैसे माँ बाप क्या करते हैं, हमेशा बच्चों को अपने से आगे रखने की कोशिश करते हैं कि बच्चे हमसे भी आगे जाएं। जो हम नहीं कर सके वो कौन करे, हमारे बच्चे करें। तो हमारे भी माता पिता बाप दादा कौन है, हमारे माता पिता ही है ना, ब्रह्मा माँ है और पिता शिव बाबा है। तो उनकी भी हमारे प्रति यही भावना है कि हम उनसे भी श्रेष्ठ हैं, हम उनसे भी ऊंचे हैं। तो बाबा ने हमें खुद सम्मान दिया, तो सतयुग में हम रॉयल फैमिली या प्रजा, उससे सम्मान के अधिकारी बनते हैं। फिर द्वापर युग में आते हैं तो भक्तों के द्वारा कितनी श्रद्धा से भावना से देवी देवताओं की पूजा होती, कितना सम्मान करते हैं अपने इष्ट का जो भक्त होते हैं, देखते हैं ना हम। आप जो भी मंदिरों में जाओ देखो कितना श्रद्धा से भक्ति करते हैं अपने देवताओं की। और फिर वर्तमान में भी खुद भगवान भी और आपस में भी, जो हमारा ईश्वरीय परिवार है, देवी परिवार है, किसी किसी के साथ हिसाब किताब है वो एक अलग बात है, लेकिन 95% क्या होता है, हमें इस देवी परिवार में भी, ईश्वरीय परिवार में भी सम्मान और स्वमान का अनुभव होता है। होता है नहीं होता है? तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे हमको फॉलो करना है। तो बाबा ने क्या किया देवी परिवार में, बाबा ने क्या किया, हर आत्मा को सम्मान दिया, चाहे वो कैसी भी आत्मा थी। बच्चों को भी बाबा ने सम्मान का स्नेह दिया, छोटे बच्चों को भी ऑर्डिनरी नहीं समझा कि अरे ये तो बच्चे हैं ये क्या करेंगे ना, लेकिन बच्चों का बोर्डिंग खोला बाबा ने। हम तो सब जानते हैं ना हिस्ट्री, जो यज्ञ की हिस्ट्री जानते हैं। तो बच्चों को बाबा कहता था ये होवनहार मेरे विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं ना। तो गुलजार दादी कई बार कहते, क्योंकि दादी उन्हीं में थी, बोर्डिंग वाले बच्चों में थी गुलजार दादी, छोटे थे उस समय। तो दादी सोचती थी हमने तो विश्व ही नहीं देखा, और बाबा कहता है विश्व कल्याणकारी। हाँ, तो क्या विश्व कल्याणकारी होता है यही नहीं पता। फिर दादी ऐसे सुनाते थे कि उस समय बाबा बोलता था समझ नहीं आता था, लेकिन जब हम बड़े हुए और जब हम सेवा करने लगे तो आज कितनी बार पूरी दुनिया में चक्कर लगा के सेवा कर चुके हैं, हमारी दादियों ने कितनी बार पूरे विश्व का भ्रमण किया, विश्व की आत्माओं को बाबा का संदेश दिया। तो बाबा ने जो दृष्टि उनके प्रति रखी उसी दृष्टि से वो इतने ऊंचे बन गए। जैसे बताया ना थॉमस एडिसन की माँ ने उसके प्रति दृष्टि रखी तो क्या बना दिया उसने, उसको वही बना दिया जो वो, हालांकि वो नहीं था लेकिन बना दिया। तो बाबा ने भी वो छोटे छोटे बच्चों को कितना ऊंच और श्रेष्ठ बना दिया। ऐसे ही बाबा ने जो भी प्रवृत्ति वाले, उनको बाबा हमेशा सम्मान देता था कि ये असंभव को भी संभव करने वाले हैं, ये महात्माओं को भी चैलेंज करने वाले हैं। तो आज की दुनिया में जिस चीज को लोग असंभव समझते हैं वो कौन संभव कर रहा है, प्रवृत्ति वाले वो संभव करके दिखा रहे हैं। फिर बांधेलियों को बाबा कहता था ये तो योग में नंबर वन आत्माएं हैं, भले बाबा से नहीं मिले लेकिन योग में इनके जैसा किसी का योग नहीं है और ये भी ऊंच पद पा सकते हैं। फिर बुजुर्गों को बाबा कहता था ये तो मेरे हमजींस हैं, मेरे ही समान हैं, तो उतना बाबा ने उनको सम्मान दिया। तो जैसे बाबा ने सबको सम्मान दिया ऐसे हमको भी क्या करना है, सबको सम्मान देना है। जैसे बाबा ने सबको ऊंची नजर से देखा तो जिस दृष्टि से बाबा ने देखा उसी दृष्टि से हमें भी देखना है, पर हम नहीं देख पाते, क्या कमी आ जाती है। बाबा ने संडे की मुरली में बताया, अगर किसी को याद है तो मैं और मेरा ठीक है, और भी कुछ जो बाबा ने कहा था वो देखें किसको राइट याद आता है। सम्मान लेना और सम्मान देना वो तो बताया, पर कमी क्या आ जाती है? हाँ, दिल शिकस्त हो जाते हैं। वो उत्तर नहीं आ रहा जो बाबा का था। बाबा ने कहा कि हमारी नजर कहाँ जाती है? कमियों पर जाती है। बाबा ने जिस नजर से देखा, जो सोमान से देखा आत्माओं को, उस सोमान से नहीं देखते हम। किस नजर से देखते हैं? इसकी क्या कमी है। और जब कमियों पर नजर जाती है तो बाबा कहते हैं उसके 36 गुण होते हैं ना, वो भी हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन भगवान ने क्या देखा? हम कैसे भी थे, जैसे भी थे, बाबा ने हमें अपना बनाया और ये उम्मीद रखी कि यही बाप समान बनने वाली आत्माएं हैं, है ना। कभी भी बाबा कहता है लास्ट नंबर भी है, मुझे पता है कि ये लास्ट नंबर है, फिर भी बाबा क्या कहता है, बच्चे तुम भी फर्स्ट आ सकते हो, माना। कभी भी उसको ना उम्मीद बाबा ने नहीं किया। तो ऐसे ही हमें फॉलो फादर करना है। बाबा कहता है अगर उसके अंदर 36 अवगुण भी हैं और एक ही विशेषता है, क्योंकि कोई विशेषता तो है जिससे वो बाबा का बना, बिना विशेषता के तो आत्मा बाबा के पास आई नहीं, तो कोई एक विशेषता तो है ही है। तो अगर वो मुश्किल भी लगती है देखने में तो भी, और नहीं भी दिखती है कोई, तो ये विशेषता तो उस आत्मा में है कि उसने साधारण रूप में आए हुए भगवान को पहचान लिया और हिम्मत रखी, पुरुषार्थ करने की हिम्मत रखी। और दुनिया की आत्माओं में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है, तो कम से कम कोटों में कोई तो है वो, चलो कोई में कोई नहीं है लेकिन कोटों में कोई आत्मा तो है कि इतनी कोटि आत्माओं में उसने एक बाबा को पहचान लिया। तो ये विशेषता तो चलो और कोई नजर नहीं आ रही, पर ये तो है ही है ना उस आत्मा के अंदर। तो हमेशा उसको उसकी विशेषता की नजर से, इसलिए बाबा हमेशा हमें गुणग्राही बनने के लिए कहते हैं, तो हर आत्मा के प्रति हमारा सम्मान रहेगा, फिर वो कैसी भी है। अब हो सकता है कि वो मेरे पर गुस्सा ही कर रही है, मेरे से अच्छा व्यवहार ही नहीं कर, जैसे मैंने कहा 95% अच्छे होते हैं, हमारे स्नेही सहयोगी होते हैं, लेकिन 5% ही होते हैं जिनके साथ हमारा, और होता ही है, वो सबका ही होता है, कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है। है कोई इससे बचा हुआ जो कहे कि आप मेरे आसपास कोई एक आत्मा ऐसी नहीं है जो मतलब जो मेरे साथ मतलब विरोधी भाव न रखती हो, है ना। तो एक ना एक तो कोई होते ही हैं हमारे आसपास। तो फिर वही हमारा चैलेंज है, यानी वही हमारे लिए विघ्न रूप बन जाते हैं। तो फिर हमारी जो धारणा है सम्मान देने की, उसमें कमी आ जाती है। तो जैसे बाबा ने किया, चाहे वो उसमें हमें क्या धारणा रखनी है, मतलब कैसे हम रख सकते हैं, तो बाबा हमेशा कहता है कि अपना कर्तव्य याद रखो। मेरा कर्तव्य क्या है? मेरा कर्तव्य है उस आत्मा को सहयोग देना। वो तो वश है ना, वो माया के वश हो गई है या परवश है। तो जो सम्मान देने वाला होगा, सम्मान वाला, वो ये नहीं सोचेगा कि ये छोटा है बड़ा है, ये ज्ञानी है या अज्ञानी है, या ये गुणवान है या अवगुण वाला है, या ये माया जीत है या माया के वश है, ना वो ऐसे नहीं सोचेंगे। लेकिन हरेक को ही वो सम्मान देंगे और वो ये सहयोग देंगे कि मैं गिरे हुए को कैसे उठाऊं, है ना। एक होता है गिरे हुए को और गिराना, और एक होता है गिरे हुए को उठाना। सहयोग देने का मतलब क्या है कि वो बेचारा कमजोर है किसी भी रूप से, तो हम कैसे उसके सहयोगी बनके उसे फिर से हम उसमें हिम्मत ले आए, उसमें उत्साह ले आए। ऐसे नहीं कि जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे ना, अब ये करते ही ऐसा है तो ऐसा ही भोगेंगे ना। सोचना क्या शुरू कर देते हैं, कलयुगी सोच, जो हमारी कलयुगी सोच होती है वो इस तरह की होती है ना। तो बाबा कहते हैं वो जो सोमान वाली आत्माएं हैं वो कभी भी ऐसे रौब वाले संकल्प, इसको कहते हैं रौब वाले संकल्प, दूसरी आत्माओं के प्रति नहीं आने देंगे। ये गिराने वाले संकल्प हैं। भले हम मुख से नहीं बोल रहे, कई बार कई तो मुख से भी बोल देते हैं, लेकिन कई बार हम मुख से नहीं बोल रहे, लेकिन मन ही मन हम उसके लिए अगर सोच रहे हैं ऐसा, तो भी क्या हो रहा है, हमारी भावनाएं भी तो काम करती है कि नहीं करती हैं। वृत्ति से बाबा कहते हैं ना, वायुमंडल बनता है, वृत्ति से हम वृत्ति को बदलते हैं, तो हमारी जो सूक्ष्म शक्ति है, संकल्प की शक्ति, वो भी उस आत्मा तक पहुंचती है। अगर किसी के प्रति मेरे नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, तो उसको समझ में आता है कि नहीं आता है? हमें ही समझ में आता है, कोई हमारे प्रति नेगेटिव वाइब्रेशन रखता है तो हमें पता चल जाता है ना कि ये ठीक नहीं है। तो जिनसे हम हल्के होते हैं वो हमें पता चलता है, और जिनसे भारी होते हैं वो भी हमें पता चलता है। तो ये सूक्ष्म एनर्जी है जो पता चलती है। तो इसीलिए कभी भी वो आत्माएं ये नहीं सोचेंगी हमेशा मुझे क्या करना है, बाबा ने मुझे क्या जिम्मेवारी दी है। तो हम सम्मान देने वाले दाता हैं, और ये नियम है कि जो हम देंगे वही लौट कर हमारे पास आएगा। तो हमने सम्मान दिया तो सम्मान हमें जरूर मिलेगा। तो सम्मान मांगने की जरूरत नहीं है। कुछ आत्माएं ऐसा सोचती हैं, हम इतना करते हैं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है ना, हमारी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। तो फिर है या नहीं, रिस्पेक्ट है या नहीं? हो सकता है आपको सामने सामने कोई आपका नाम ना लेता हो, कोई आपको मान नहीं देता हो, वो भी सकता है। अभी हम तो स्थूल सेवा कर रहे हैं, हम कहाँ स्टेज पर जाते हैं ना, कौन हमें जानता है ना। अभी माताएं हैं, मानो हमारी भोली भाली माताएं हैं, तो सारा अंदर का सारा स्थूल काम जो है वो सब कर्मणा सेवा ज्यादातर माताएं ही करती हैं ना। तो ये सारी कभी कभी ये संकल्प चल सकता है कि हम ज्यादा मेहनत कौन करता है, स्थूल वाला करता है ना, सूक्ष्म वाले की मेहनत तो दिखाई नहीं देती वैसे भी है ना। तो फिर ये संकल्प अगर हमें आता है मानो, तो क्या हमारा मान है या नहीं, क्या कहेंगे बताओ? तो आत्माओं का मान और परमात्मा का मान है ना। अगर हम आत्माओं के मान के पीछे जाते हैं, इसने मेरे को नहीं पूछा, हमने इतना किया नहीं, भगवान ने हमें कितना ऊंचा स्वमान दिया, उसकी स्मृति में रहे ना, उसकी खुशी में रहे, और आप उसमें रहोगे ना, तो आत्माओं का अपने आप पीछे परछाई की तरह आएगा। बाबा कहता है वो प्रकृति आपकी दासी बनेगी ना, इच्छा मात्रम अविद्या, मतलब अगर हम उसके पीछे पीछे जाएंगे तो हम कभी भी परछाई को पकड़ नहीं सकते, लेकिन अगर हम रोशनी की तरफ मुंह करते हैं तो क्या होता है, परछाई हमारे पीछे पीछे आने लगती है। तो अगर हमारा योग बाबा से लगा हुआ है, बाबा की स्मृतियां हैं हमें, जो बाबा ने हमें स्मृतियां दिलाई वो हैं, तो फिर हमें मांगने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही हमें वो प्राप्ति होने वाली है। तो इसलिए मांगने की चीज नहीं है, लेकिन देने की चीज है, और हम कौन है, दाता। तो जब तक हम देंगे नहीं तब तक हमें मिलेगा भी नहीं। और दूसरी विधि बाबा ने बताई, सोमान में रहेंगे तो मान अपने आप मिलेगा, क्योंकि सोमान में रहेंगे तो आपकी स्थिति इतनी ऊंची होगी, ऊंची स्थिति का मतलब उड़ती कला वाले, उड़ती कला वाले माना जैसे हम देखते हैं ना आसमान में हम उड़ते हैं, तो बाकी की सारी बातें जो हैं वो एरोप्लेन में बैठकर जाते हैं तो कैसा लगता है, नीचे की चीजें क्या लगती हैं। तो ऐसे ही बाकी सब बातें हमारे लिए क्या हो जाती हैं, कोई मायने नहीं रखती, वो बहुत छोटी हो जाती हैं, और उनको पार करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होता। तो विघ्न, जब विघ्न आते हैं, कोई भी प्रकार की बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं हमारे जीवन में, और अगर हम व्यर्थ संकल्पों में चले गए या हम नेगेटिव संकल्पों में चले गए, जिसको बाबा कहता है क्यों क्या कैसे में हम चले गए, तो हम स्मृति से विस्मृति में आ गए। लेकिन यहां भी बाबा ने हमें विधि बताई कि जो भी विघ्न तो आने ही है, ब्राह्मण जीवन में विघ्न नहीं आएंगे, समस्याएं नहीं आएंगी, ये तो बाबा ने कहा नहीं कभी भी, बाबा तो कहता है बाबा माया को और ही बोलता है जाकर मेरे बच्चों का पेपर लो, पता तो चले ना ये पढ़ाई कैसी पढ़ रहे हैं, एग्जाम ही नहीं होगा तो फिर विजयी कौन होगा, जो युद्ध लड़ेगा, जो युद्ध ही नहीं लड़ेगा तो वो क्या विजयी कहलाएगा, कहलाएगा क्या, तो पेपर तो देना पड़ेगा ना। तो फिर हमें पेपर समझना है कि पेपर मेरे सामने आया है और बाबा ने जो मुझे अस्त्र शस्त्र दिए हैं उससे मुझे इसे पास कर लेना है, या बाबा ने मुझे ज्ञान की जो पॉइंट्स दी हैं वो मैं यूज करके इसे पास कर लूं। व्यर्थ संकल्पों में जाने की बजाय विजयी कैसे बनूं वो सोचना है, और ये सारी स्मृतियां हमें विजयी बनाने वाली हैं। अगर मैंने सोच लिया मैं विजयी रतन हूं तो विजय की हिम्मत आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, मैं ही कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, मैंने ही विजय पाई थी, मेरे सिवा कौन विजयी होगा। हाँ भले ये बात मेरे सामने आई है मुझे कमजोर करने वाली है, लेकिन लेकिन मुझे विजयी होना है। और कौन मेरे साथ है, सर्वशक्तिमान जो सर्व समर्थ है वो मेरे साथ है। हाँ तो जब वो मेरे साथ है तो फिर जैसे बच्चे माँ बाप के साथ होते हैं तो कितने निर्भय होते हैं, उनको पता है ना कौन संभाल रहा है, हम तो हमें डरने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे संभालने वाले हमारे साथ हैं। तो बाबा जब मेरे साथ हैं तो फिर मुझे इन सब बातों की क्या परवाह करने की जरूरत है ना। तो इसीलिए सोमान की स्मृतियां हमें उड़ती कला में ले जाती हैं, जो बताया कि ये बातें फिर हमारे लिए बहुत छोटी हो जाती हैं और उसको हम सहज पार कर लेते हैं। तो इसीलिए हर दिन जो भी बाबा हमें, आज की मुरली में भी बाबा ने सोमान दिया ना, क्या सोमान दिया, चैतन्य लाइट हाउस हो, है ना, तो चैतन्य लाइट हाउस। हाँ तो मैं पूरे विश्व को लाइट और माइट देने वाली आत्मा हूं, तो लाइट हाउस कब बनेंगे, जब मेरी मनसा इतनी पावरफुल होगी कि जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर बैठे हुए मीलों तक अपना प्रकाश देता है। माना कोई भी सोमान उसकी गहराई में जाना। अब जैसे कहा मैं दिल तख्त नशीन हूं, तो दिल तख्त नशीन कौन बनेगा, ऐसे ही बन जाएंगे दिल तख्त नशीन, कौन होगा दिल तख्त नशीन, कोई दिल तख्त नशीन माना इतना प्यारा। हा? जैसे कहा ना नैनों के नूर हैं, या जो भी बाबा ने हमें इस तरह के प्यार के सोमान दिए हैं, तो वो कब होंगे, जैसे बच्चे आज्ञाकारी होते हैं तो खुद ही प्यार पाते हैं, बच्चे अगर योग्य हैं तो खुद ही प्यार पाते हैं, है ना। तो बाबा ने हमें विधि दी है फॉलो फादर, जितना हम श्रीमत पर चलेंगे, जितना हम ब्रह्मा बाप समान संकल्प बोल और कर्म करेंगे उतना ही हम, और फिर सच्चे दिल पर साहब राजी, किस पर राजी होता है बाबा, जो सच्चाई सफाई वाला है। तो ये गुण मेरे अंदर है जो मुझे दिल तख्त नशीन बनाने वाले हैं। तो अगर मैंने ये सोमान लिया आज के लिए कि मैं बाबा की दिल तख्त नशीन हूं, तो मुझे ये चेकिंग करना है कि मैं दिल तख्त नशीन वाले गुण उनमें कहां तक मेरे अंदर कमी है कि जो मैं बाबा की दिल तख्त नशीन अनुभव करती हूं या नहीं करती हूं। ना कई ऐसा फील करते हैं कि बाबा का प्यार कभी अनुभव होता है कभी नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, हा? बाबा तो प्यार का सागर है, वो तो प्यार दे ही रहा है ना, लेकिन हमें क्यों नहीं अनुभव हो रहा, क्योंकि हम जो प्यार पाने की विशेषता है आत्मा की, वो विशेषता अभी हमारी कम हो गई, इसीलिए बाबा का प्यार हमें अनुभव नहीं हो रहा है। तो ऐसे सोमान का हम अभ्यास करें, जो भी हम लें, जो सोमान लेते हैं, अब जैसे मैं विश्व कल्याणकारी हूं, तो विश्व कल्याणकारी आत्मा के क्या गुण होंगे, कैसे हम विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं, तो उसकी थोड़ी गहराई में जाएंगे ना, तो वो विश्व कल्याणकारी वाला स्वरूप हमें ज्यादा याद रहेगा। तो ऐसे हर दिन हम जो चाहे मुरली वाला ले लें, जो उस दिन की मुरली वाला है, और नहीं तो मुझे जो पसंद है, कई ऐसे होते हैं ना ये मेरे लिए जरूरी है सोमान, इसका मैं अभ्यास करूंगी तो फिर मेरी स्थिति अच्छी बनेगी क्योंकि मैं इसमें वीक फील करती हूँ। तो मानो आप किसी भी बात में कमजोर महसूस करते हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान वाला ले लो। हाँ अगर आपको लगता है कि लोग आपको प्यार नहीं करते। माना कई बार किसी को लगता है कि हाँ मेरे को तो लोग निग्लेक्ट करते हैं, ये तो आप वो प्यार वाले सोमान ले लो जिसमें बाबा हमें प्यार का अनुभव कराता है कि बाबा प्यार का सागर है, या जो भी दिल तत्व नशीन है, बाबा के सिकिलदे हैं, नैनों के नूर हैं, बाबा के चुने हुए रतन हैं, तो इस तरह का सोमान लेकर के अपने उस गुण को हम विकसित करें। तो इस तरह से अगर हम अभ्यास करेंगे तो जो बाबा ने हमें सोमान दिए हैं सचमुच हम वही बन जाएंगे जो बाबा हमें बनाना चाहते हैं। ओम शांति है। कुछ ताली बजा रहे हैं, कुछ एक हाथ हिला रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही ताली बजाओ, लेकिन बहन जी ने सिखाया ना एक हाथ की ताली। हाँ,
ओम शांति। फरिश्ते कैसे ताली बजाते हैं? एक हाथ की ताली बजाकर, क्योंकि हम भट्टी में है ना, मौन, मुख का भी मौन, मन का भी मौन और मोबाइल का भी मौन है ना, मौन में कैसे बजाते हैं ताली? ऐसे बजाते हैं। हम सब की तरफ से आदरणीय श्रद्धे हमारी डॉक्टर सविता बहन जी का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। सबके गले में, सब अपने गले में देख लो, एक सुंदर सी माला पहना है, पहना ही नहीं, पहने वो वाली माला नहीं है। आज जो दीदी ने आप सबको क्या पहना है, स्वमान की माला। ऐसे आज बाबा कहते, आज बाबा ने कहा ना, मैं माला भक्ति तो नहीं करते तुम तो, लेकिन बाबा ने हम सबके गले में एक स्वमान की माला, रोज सवेरे उठ करके क्या करना है, उस स्वमान की माला फेरना है और साथ साथ उसका स्वरूप बनना है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दीदी ने दिया जैसे शेर का, तो ऐसे बाबा ने भी, हम सब भेड़ तो थे, ज्ञान सागर में बुला करके, जब सागर में, पानी में, नदी में झांक करके देखा तो हमें भी अपना स्वरूप याद आ गया। तो ज्ञान सागर के इस पानी में, जल में हमारा वास्तविक स्वरूप दिखाई देने लगा कि हम ही वो देव स्वरूप थे, हम ही वो श्रेष्ठ आत्माएं थे। संडे की मुरली में भी बाबा ने लास्ट संडे का ना, पीओटी की रॉयल्टी क्या है, स्वमानधारी और सम्मानधारी होगा, ये हमारी रॉयल्टी है। ये पीओटी से रॉयल्टी आती है, रॉयल्टी से हम लोग स्वमानधारी सुसम्मानधारी बनेंगे। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने विषय को स्पष्टीकरण करते हुए, अभी विस्मृत हो गए थे, फिर से हम सब क्या बन गए, अभी शेर बन गए, भेड़िया, फिर से हम शेर बन गए है या नहीं? स्मृतियां दिलाई ना दीदी ने, इन सब स्वमानों की स्मृति दिलाते हुए उस श्रेष्ठ स्मृति से समर्थ स्वरूप बनने का लक्ष्य दिया, इसी समर्थि में हम रहेंगे।
के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, महकोगे फूल बन के इस जहान में, महकोगे फूल बन के इस जहान में, चमकोगे चांद से अंधकार में, चमकोगे चांद से अंधकार में। तुम सृष्टि के श्रृंगार हो,
तुम बहार हो,
तुम सृष्टि के श्रृंगार हो,
तुम बहार हो,
मधुबन के चमन की तुम बहार हो, मधुबन के चमन की
तुम बहार हो।
प्रेम के अवतार